नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके नाम के साथ ही ना कई सवाल और विरोधाभास जुड़े हुए हैं। सर थॉमस मोर, मतलब एक तरफ तो यूटोपिया के लेखक, वो आदर्शों की दुनिया रचने वाले,
हाँ,
और दूसरी तरफ अपने समय के सत्ता संघर्ष में उलझे हुए एक राजनेता भी,
हाँ,
और अंत में तो खैर अपनी अंतरात्मा के लिए जान देने वाले शहीद।
बिल्कुल, ये वाकई एक दिलचस्प पहेली
है ना?
हाँ।
थॉमस मोर को समझना, मतलब 1478 से 1535 तक का उनका जीवन, ये एक साथ कई किरदारों को समझने जैसा है। वो एक कामयाब वकील थे,
हाँ
एक गहरे दार्शनिक, एक चतुर राजनेता भी थे, और जैसा आपने कहा कैथोलिक चर्च के लिए तो संत भी हैं,
सही।
पुनर्जागरण काल के मानवतावादी, लेकिन साथ ही अपनी धार्मिक मान्यताओं पर बिल्कुल अटूट रहने वाले।
तो उनका जीवन, उनके विचार और खासकर वो किताब यूटोपिया आज भी हमें समाज, राजनीति, नैतिकता इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की, समझने की कि थॉमस मोर असल में कौन थे।
हाँ, किस माहौल में उनके विचार पनपे।
हाँ, और उनकी वो किताब यूटोपिया वो इतनी खास क्यों मानी जाती है, और उनकी जो जटिल सी विरासत है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।
चलिए तो शुरू करते हैं फिर इस सफर को।
बिल्कुल। देखिए, मोर के समय को समझना बहुत जरूरी है। वो 15वीं 16वीं सदी का यूरोप था। एक बड़ी उथल पुथल का दौर था वो।
अच्छा,
एक तरफ तो आप देखिए, इटली से शुरू होकर पूरे यूरोप में पुनर्जागरण मतलब रेनेसां की लहर थी।
हाँ, क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल।
बिल्कुल। पुरानी ग्रीक और रोमन विद्या, कला, साहित्य, इन सब में लोगों की रुचि फिर से जाग रही थी। मानवतावाद का जोर था।
यानी फोकस इंसान पर आ रहा था।
हाँ, इंसान की क्षमता, उसका तर्क, ये दुनिया, इन पर ध्यान ज्यादा था। मध्ययुगीन जो धार्मिक जकड़न थी वो थोड़ी ढीली पड़ रही थी, ऐसा कह सकते हैं।
और दूसरी तरफ क्या चल रहा था?
दूसरी तरफ धर्म के क्षेत्र में भी समझिए एक बड़ा भूचाल आया हुआ था।
मार्टिन लूथर।
हाँ, मार्टिन लूथर ने 1517 में कैथोलिक चर्च की कई मान्यताओं और तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिससे वो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू हुआ। और इसने क्या किया कि पश्चिमी ईसाई दुनिया की जो सदियों पुरानी एकता थी उसे तोड़ दिया।
और माहौल में गर्मी तो और भी चीजों से आ रही हुई, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह।
हाँ बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था तो नए विचार बहुत तेजी से फैल रहे थे, और नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज।
हाँ, उसने भी सोच को हिला दिया होगा।
बिल्कुल, यूरोप के लोगों की सोच को झकझोर दिया था
तो
उसने।
मतलब विचारों का टकराव भी था और बदलाव का माहौल भी, और इसी माहौल में बड़े बड़े नाम भी थे उस वक्त। मोर के दोस्त इरास्मस।
हाँ, इरास्मस, फिर राजनीतिक विचारक मैकियावेली,
मैकियावेली, बिल्कुल।
धर्म सुधारक लूथर,
लूथर तो थे ही।
और इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम, जिनके साथ मोर का रिश्ता आखिर में इस खैर उनकी जान जाने का कारण बना।
हाँ, उस पर आएंगे। तो मतलब उस दौर में एक तरफ पुरानी मध्ययुगीन सोच थी और दूसरी तरफ पुनर्जागरण की नई मानवतावादी सोच,
एकदम सही।
और एक तरफ कैथोलिक चर्च की पारंपरिक सत्ता,
और दूसरी तरफ उसे चुनौती देते प्रोटेस्टेंट विचार।
एकदम सही। और थॉमस मोर जो थे वो इसी चौराहे पर खड़े थे। उनके अंदर हमें ये दोनों दुनियाएं दिखती हैं।
अच्छा।
हाँ, नए मानवतावादी विचार भी दिखते हैं और कैथोलिक धर्म के प्रति गहरी अटूट आस्था भी। और ये तनाव ये उनके पूरे जीवन और उनके लेखन में झलकता है।
तो इस दिलचस्प माहौल में थॉमस मोर का जन्म हुआ लंदन में।
हाँ
उनके पिता जॉन मोर वो तो जाने माने वकील और जज थे।
हाँ बिल्कुल। तो घर में पढ़ाई लिखाई और कानून का माहौल तो पहले से ही था,
हाँ जाहिर है।
और उन्हें उस जमाने की बेहतरीन तालीम मिली। पहले लंदन के एक अच्छे स्कूल सेंट एंथनी में पढ़े, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, कैंटरबरी कॉलेज। हालांकि ऑक्सफोर्ड में वो ज्यादा समय नहीं रहे, उनके पिता चाहते थे कि वो कानून पढ़ें।
अच्छा।
पिता का जोर था।
हाँ, तो उन्होंने लंदन के जो इन्स ऑफ कोर्ट है, न्यू इन और लिंकन इन, वहां से कानून की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कानून के साथ साथ उनकी दिलचस्पी बनी रही
किसमें?
ग्रीक में, लैटिन साहित्य में, धर्मशास्त्र में, ये सब वो पढ़ते रहे।
और ये भी सुना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो साधु मतलब भिक्षु बनने की सोच रहे थे।
हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ था। कानून की पढ़ाई के बाद करीब 4 साल तक उन्होंने लंदन के पास एक कार्थुशियन मठ था, उसके करीब रहकर भिक्षुओं जैसा जीवन बिताया।
ओह, कार्थुशियन तो बहुत कठोर माने जाते हैं।
हाँ, अपने कठोर अनुशासन और एकांतवास के लिए जाने जाते हैं। तो मोर ने बहुत गंभीरता से सोचा कि क्या उन्हें ये सांसारिक जीवन छोड़ देना चाहिए। लेकिन आखिरकार उन्होंने तय किया कि नहीं, उनका रास्ता समाज और परिवार के बीच रहकर ही निकलेगा। फिर उन्होंने शादी की, वकालत शुरू की
और फिर राजनीति में उनका सफर शुरू हो गया।
हाँ, उनकी काबिलियत, उनकी ईमानदारी, इसने उन्हें जल्दी ही शोहरत दिलाई। वो एक सफल वकील बने, संसद के सदस्य चुने गए, फिर लंदन शहर के अंडर शेरिफ बने, जो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था उस समय।
अच्छा।
कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशनों पर उन्हें विदेश भेजा गया। वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी संसद के निचले सदन उसके स्पीकर भी रहे।
तरक्की तो काफी तेज रही।
हाँ, तरक्की होती गई और 1529 में वो इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर बन गए।
लॉर्ड चांसलर, ये तो मतलब राजा के बाद सबसे बड़ा पद था ना।
बिल्कुल बिल्कुल, न्यायिक और राजनीतिक दोनों तरह से
बिल्कुल
कामयाबी के शिखर पर थे वो।
लेकिन फिर ये गिरावट कैसे आई इतना ऊपर पहुंचने के बाद?
गिरावट का कारण बना राजा हेनरी अष्टम का एक फैसला। हेनरी जो थे वो अपनी रानी कैथरीन ऑफ एरागॉन को तलाक देना चाहते थे।
हाँ, एन बोलिन से शादी करने के लिए।
बिल्कुल, और कैथोलिक चर्च इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। पोप का कहना था कि पहली शादी वैध है, तलाक नहीं हो सकता। तो हेनरी ने पोप का अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया और खुद को इंग्लैंड के चर्च का सर्विस सर्वा घोषित कर दिया।
अच्छा,
पोप को दरकिनार कर दिया। हाँ, और इसके लिए 1534 में एक कानून पास किया गया, एक्ट ऑफ सुप्रेमेसी।
और मोर ने इसे मानने से इनकार कर दिया, यही वजह बनी?
बिल्कुल यही। वो एक कट्टर कैथोलिक थे, उनके लिए पोप ही चर्च के सर्वोच्च नेता थे। राजा को चर्च का प्रमुख मानना ये उनके जमीर के खिलाफ था। उन्होंने पहले ही लॉर्ड चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था।
हाँ, जब ये मामला गर्मा रहा था।
हाँ, लेकिन जब उन पर ये नया कानून मानने की शपथ लेने का दबाव डाला गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसी सैद्धांतिक विरोध की वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।
और अंत?
अंत तो दुखद था। उन्हें लंदन के टावर में कैद कर लिया गया। करीब 15 महीने वो कैद में रहे। फिर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 6 जुलाई 1535 को टावर हिल पर उनका सिर कलम कर दिया गया।
ओह, देख इतनी कामयाब जिंदगी का एहसान। खैर, चलिए अब उनकी उस रचना पर आते हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, यूटोपिया। 1516 में आई थी ये किताब, आखिर ऐसा क्या खास था इसमें?
यूटोपिया, हाँ, ये एक कमाल की किताब है। ये लैटिन में लिखी गई थी और इसमें एक काल्पनिक द्वीप यूटोपिया का जिक्र है।
यूटोपिया, ये नाम भी उन्होंने ही गढ़ा था, है ना?
हाँ, उन्होंने खुद गढ़ा था ये नाम। ग्रीक शब्दों उटोपोस यानी कहीं नहीं और यूटोपोस यानी अच्छी जगह, इन दोनों को मिलाकर।
दिलचस्प। तो इस द्वीप पर कैसा समाज रहता था, क्या खासियतें थी उसकी?
कई चौंकाने वाली बातें थी उस जमाने के हिसाब से, जैसे यूटोपिया में निजी संपत्ति नहीं है।
क्या बात है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी
नहीं, सब कुछ साझा है। लोग दिन में केवल 6 घंटे काम करते हैं।
बस 6 घंटे?
हाँ, बाकी समय वो पढ़ाई लिखाई या अपने शौक पूरे करने में लगाते हैं।
कमाल है।
और सुनिए, सोने चांदी की वहाँ कोई कीमत नहीं, उनसे तो वो कैदियों की जंजीरें या बच्चों के खिलौने बनाते हैं।
मजाक है या सच?
यही तो व्यंग्य है, शासन तर्क और समझदारी से चलता है। और हाँ, एक और बड़ी बात, वहाँ काफी हद तक धार्मिक सहिष्णुता है।
अच्छा, उस जमाने में?
हाँ, लोग अलग अलग तरह से ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो दूसरों पर अपने विचार न थोपे और शांति भंग न करें।
ये तो वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच लगती है। निजी संपत्ति का न होना, काम के घंटे कम होना, धार्मिक सहिष्णुता।
हाँ, और यही इसकी खूबी है। यूटोपिया सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये असल में 16वीं सदी का जो यूरोप था, खासकर इंग्लैंड, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बुराइयों पर एक बहुत तीखा व्यंग है।
अच्छा, मतलब ये आलोचना थी?
बिल्कुल। मोर इस काल्पनिक समाज के जरिए अपने समय के लालच, अन्याय, गरीबी, युद्धों और धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठा रहे थे। वो ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि भाई, समाज की जो समस्याएं हैं वो क्या इंसान के लालची स्वभाव की वजह से है या फिर समाज की बनावट ही गलत है।
और शायद ये सवाल भी कि क्या निजी संपत्ति ही सारी बुराइयों की जड़ है।
बिल्कुल, ये केंद्रीय सवाल था।
और इसी किताब ने यूटोपियन सोच को जन्म दिया, मतलब एक आदर्श समाज की कल्पना।
हाँ, इसी किताब में यूटोपिया ने न सिर्फ ये शब्द दिया बल्कि एक पूरी साहित्यिक विधा, एक जॉनरे शुरू कर दिया, यूटोपियन फिक्शन।
अच्छा,
यानी ऐसे समाज की कल्पना करना जो आदर्श हो, जो मौजूदा समाज की कमियों को दूर करता हो। तब से लेकर आज तक न जाने कितने लेखकों ने अपनी अपनी यूटोपिया की कल्पना की है।
यूटोपिया के अलावा उनकी और कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं?
एक और अहम किताब है हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड III, यानी राजा रिचर्ड III का इतिहास। ये उन्होंने शायद 1513 से 1518 के बीच लिखी थी। ये अंग्रेजी में इतिहास लेखन का एक शुरुआती और बहुत प्रभावशाली नमूना है।
अच्छा, इसी किताब ने रिचर्ड थर्ड की वो खलनायक वाली छवि बनाई।
हाँ बिल्कुल, एक क्रूर कुटिल राजा के तौर पर, जिसे बाद में शेक्सपियर ने अपने नाटक रिचर्ड थर्ड में अमर कर दिया। इससे मोर की, मतलब इंसान के मनोविज्ञान को समझने और किरदारों को गढ़ने की जो कला थी, उसका पता चलता है।
दिलचस्प, यानी इतिहास लेखन में भी उनका बड़ा योगदान रहा और धार्मिक विषयों पर भी उन्होंने लिखा था।
हाँ, खासकर जब वे लॉर्ड चांसलर थे। 1529 में उन्होंने एक किताब लिखी, अ डायलॉग कंसर्निंग हेरेसीज, यानी विधर्मियों के संबंध में एक संवाद।
इसमें क्या था?
इसमें वे कैथोलिक मान्यताओं का जोरदार बचाव करती हैं और मार्टिन लूथर और विलियम टिंडेल जैसे जो प्रोटेस्टेंट सुधारक थे, उनकी कड़ी आलोचना करती हैं।
ओह, तो ये किताब यूटोपिया से बिल्कुल अलग है?
हाँ, ये किताब इस मायने में बहुत दिलचस्प है कि ये यूटोपिया के लेखक के दूसरे पहलू को दिखाती है। जहाँ यूटोपिया में धार्मिक सहिष्णुता की बात है, वहीं इस किताब में वो कैथोलिक कट्टरता का पक्ष लेते नजर आते हैं।
ये विरोधाभास तो वाकई ध्यान खींचता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे जरूर। उनके पत्र और जेल में लिखी रचनाओं का भी जिक्र होता है अक्सर।
हाँ, उनके पत्र, खासकर अपने दोस्त इरास्मस को लिखे पत्र और अपनी बेटी मार्गरेट रॉपर को लिखे पत्र, उनसे उनकी बुद्धिमत्ता, उनके मजाकिया अंदाज और उनके निजी जीवन की झलक मिलती है।
मार्गरेट तो खुद भी काफी पढ़ी लिखी थी ना?
हाँ, उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी ये। और टावर ऑफ लंदन में कैद के दौरान उन्होंने कुछ किताबें लिखीं, जैसे अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूलेशन, यानी संकट के विरुद्ध सांत्वना का संवाद। ये उनकी गहरी आस्था और मुश्किल हालात में भी उनके मानसिक संतुलन को दिखाती हैं।
तो अगर हम मोर के मुख्य वैचारिक योगदानों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे, वो किस तरह के विचारक थे?
मोटे तौर पर देखें तो उनके योगदान तीन क्षेत्रों में है, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक आलोचना और नैतिक धर्मशास्त्र। यूटोपिया के जरिए उन्होंने समाज की समस्याओं की जड़ तक जाने और एक वैकल्पिक, एक बेहतर व्यवस्था की कल्पना करने का तरीका दिखाया।
हाँ, एक तरह से सामाजिक आलोचना का नया तरीका।
बिल्कुल, संपत्ति, शासन, न्याय जैसे मुद्दों पर उनकी सोच ने आने वाली सदियों के राजनीतिक विचारों को बहुत प्रभावित किया।
और दूसरा योगदान?
दूसरा, उनका ईसाई मानवतावाद का विचार बहुत अहम है। वो मानते थे कि प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान, जो मानवतावाद का आधार था, और ईसाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उनको मिलाया जा सकता है।
अच्छा, यानी क्लासिक्स और क्रिश्चियनिटी का मेल।
हाँ, वो शिक्षा, तर्क और नैतिक सुधार पर जोर देते थे, लेकिन हमेशा कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के दायरे में रहकर। उनका मानना था कि इंसानी तर्क का असली मकसद ईश्वर को समझना और एक नैतिक जीवन जीना होना चाहिए।
और वो कौन से खास मुद्दे थे जिन पर उनकी सोच बार बार लौटती थी, मतलब सेंट्रल थीम्स क्या थी?
कई थी। एक तो निजी संपत्ति और उससे पैदा होने वाली सामाजिक गैर बराबरी की आलोचना, खासकर यूटोपिया में। फिर सैद्धांतिक स्तर पर ही सही, धार्मिक सहिष्णुता की वकालत, नैतिकता और राजनीति में तर्क की भूमिका पर बल देना, और इंसान के बनाए समाज के जो आदर्श होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है, उसके बीच जो हमेशा एक खिंचाव बना रहता है, उस पर विचार करना।
अगर उनकी तुलना करें उनके समय के दूसरे बड़े विचारकों से, जैसे मैकियावेली या लूथर से, तो क्या फर्क नजर आता है?
काफी फर्क है। मैकियावेली को लें, जो द प्रिंस के लेखक थे, वो मानते थे कि शासक को सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए नैतिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए।
हाँ, चाहे छल कपट ही क्यों ना करना पड़े।
एंड जस्टिफाइज द मीन्स।
बिल्कुल।
मोर इसके ठीक उलट थे। उनका मानना था कि राजनीति का मकसद नैतिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
और लूथर से?
लूथर ने तो कैथोलिक चर्च की सत्ता को ही चुनौती दे दी थी, जबकि मोर चर्च के अंदर सुधार तो चाहते थे, लेकिन उसकी संस्थागत सत्ता को बनाए रखने के पक्ष में थे। देखा जाए तो मोर की सोच कुछ कुछ प्लेटो जैसी थी, जो एक आदर्श राज्य की तलाश में थी, लेकिन मोर की चिंताएं उनके अपने समय की सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं से ज्यादा जुड़ी थीं।
तो कुल मिलाकर मोर की विरासत क्या है? आज वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं? क्या लेगेसी छोड़ी उन्होंने?
देखिए, उनकी विरासत बड़ी दिलचस्प और दोहरी है। एक तरफ कैथोलिक चर्च उन्हें एक संत और शहीद मानता है, 1935 में उन्हें संत घोषित किया गया था।
अच्छा।
उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपने जमीर की आवाज और पोप के प्रति निष्ठा के लिए अपनी जान दे दी।
हाँ, वो रॉबर्ट वॉल्ट का मशहूर नाटक और फिल्म भी है, ए मैन फॉर ऑल सीजंस।
बिल्कुल, हर मौसम का आदमी। उसने मोर की इसी छवि को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है, सिद्धांतों पर टिके रहने वाले एक आदर्श व्यक्ति की छवि।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ बौद्धिक जगत में उनकी पहचान है यूटोपिया के लेखक के तौर पर। इस किताब का असर जबरदस्त रहा है और बहुत लंबे समय तक रहा है।
हाँ, वो तो है।
इसने यूटोपियन साहित्य की शुरुआत की। समय समय पर लोगों ने यूटोपिया को अलग अलग नजरिए से देखा है। किसी ने इसे समाजवाद या साम्यवाद का शुरुआती नक्शा माना।
अच्छा।
हाँ, किसी ने इसे सिर्फ एक व्यंग्य कहा, किसी ने ईसाई मूल्यों का रूपक समझा, तो किसी ने मानवतावादी विचारों का एक प्रयोग। और आज यूटोपियन शब्द का इस्तेमाल हम किसी भी ऐसी आदर्शवादी सोच के लिए करते हैं जो बहुत अच्छी तो लगती है पर शायद हकीकत में मुमकिन न हो।
सही। तो इसका मतलब उनका असर सिर्फ धर्म या साहित्य तक ही सीमित नहीं रहा?
बिल्कुल नहीं, उनका असर राजनीति विज्ञान पे पड़ा, खासकर सामाजिक न्याय और संपत्ति के सवालों को लेकर। साहित्य में तो यूटोपियन और डिस्टोपियन।
हाँ, डिस्टोपियन यानी यूटोपिया का उल्टा।
बिल्कुल, यानी बुरा समाज। तो इस लेखन की पूरी परंपरा ही उनसे जुड़ी है, स्विफ्ट से लेकर ऑरवेल और आगे तक। कैथोलिक विचार में वो आज भी जमीर और सत्ता के बीच टकराव का एक प्रतीक है। कानूनी दर्शन में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है जिसने अन्यायपूर्ण लगने वाले कानून का शांतिपूर्ण विरोध किया।
हाँ, सिविल डिसोबीडियंस का एक तरह से उदाहरण
कह सकते हैं। आज भी जब सत्ता के सामने व्यक्ति के जमीर की स्वतंत्रता की बात होती है तो थॉमस मोर का जिक्र आता है। मानव अधिकारों की बहसों में भी वो प्रासंगिक हो जाते हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं, शायद वो उनकी सोच की अच्छी झलक देते हैं।
हाँ, कई हैं। सबसे मशहूर तो शायद उनके आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर कहे थे।
क्या थे वो?
मैं राजा का एक अच्छा सेवक मर रहा हूँ, लेकिन पहले ईश्वर का।
आई डाई द किंग्स गुड सर्वेंट बट गॉड्स फर्स्ट। वाह, साफ है प्राथमिकता।
बिल्कुल, ये साफ बताता है कि उनकी नजर में ईश्वर और जमीर का स्थान राजाज्ञा से ऊपर था, खासकर धार्मिक मामलों में।
और यूटोपिया से कुछ?
हाँ, यूटोपिया से एक और विचारणीय बात। किसी राष्ट्रमंडल यानी समाज की सबसे अच्छी स्थिति वह है जहाँ नागरिक बहुत अमीर न होकर भी खुशी और आनंद का जीवन जी सकें।
मतलब मॉडरेशन, मध्यम मार्ग।
हाँ, ये उनकी सोच दिखाता है कि समाज का लक्ष्य अत्यधिक अमीरी या गरीबी नहीं बल्कि सबके लिए एक ठीक ठाक खुशहाल जीवन होना चाहिए।
और जमीर के महत्व पर भी कुछ कहा था?
हाँ, ये कथन उनके जमीर के महत्व पर जोर देता है। इंसान की आत्मा पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। यानी आध्यात्मिक और नैतिक शुचिता उनके लिए सबसे ऊपर थी, जान से भी ज्यादा।
और वो शिक्षा और अपराध वाली बात भी बहुत जबरदस्त है।
हाँ हाँ, यूटोपिया से ही है वो भी, समाज और अपराध पर ये तीखी टिप्पणी जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है।
क्या थी वो?
अगर आप अपने लोगों को ठीक से शिक्षित नहीं होने देते, उनके आचार व्यवहार को बचपन से बिगड़ने देते हैं और फिर उन अपराधों के लिए उन्हें सजा देते हैं जिनकी तरफ उनकी शुरुआती बिगड़ी हुई परवरिश ने ही उन्हें धकेला था, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए सिवाय इसके कि आप पहले चोर बनाते हैं और फिर उन्हें सजा देते हैं।
वाह, क्या जबरदस्त आलोचना है सामाजिक व्यवस्था की। मतलब समाज खुद जिम्मेदार है।
बिल्कुल, ये कहता है कि समाज खुद अपराधी पैदा करने का जिम्मेदार है अगर वो शिक्षा और सही माहौल देने में नाकाम रहता है।
ये बात तो आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा सच लगती है। लेकिन जैसा हमने पहले इशारा किया था, मोर खुद विवादों से परे नहीं थे।
हाँ, ये भी सच है।
खासकर उनकी किताब यूटोपिया के आदर्शों और लॉर्ड चांसलर के तौर पर उनके कामों में एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। ये क्या मामला है?
हाँ, और यही उनकी विरासत का सबसे जटिल और विवादास्पद पहलू है। एक तरफ यूटोपिया है जहाँ वो, जैसा हमने कहा, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते दिखते हैं। दूसरी तरफ जब वो खुद सत्ता में थे लॉर्ड चांसलर के तौर पर, तो वो प्रोटेस्टेंट सुधारकों जिन्हें वो विधर्मी हेरेटिक्स मानते थे उनके प्रति बेहद कठोर थे।
कितने कठोर?
उन्होंने कई प्रोटेस्टेंटों पर मुकदमे चलवाए और उनमें से कुछ को तो जिंदा जलाने की सजा दी गई। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि उनके चांसलर रहते हुए करीब 6 लोगों को विधर्म के आरोप में जलाया गया।
6 लोगों को? मैं तो मतलब।
हाँ, ये बात उनके आज के प्रशंसकों को भी असहज करती है और आलोचक इसे गहरे पाखंड का सबूत मानते हैं।
ये तो वाकई चौंकाने वाला विरोधाभास है। इस पर उनके समर्थक या बचाव करने वाले क्या कहते हैं? क्या तर्क देते हैं वो?
बचाव में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि भाई वो अपने समय के कानूनों के तहत काम कर रहे थे और उनका मजबूती से मानना था कि प्रोटेस्टेंट विचार कैथोलिक चर्च और समाज की एकता के लिए खतरनाक है।
अच्छा, तो वो इसे अपना कर्तव्य मानते थे?
हाँ, कि उन्हें रोकना उनका कर्तव्य था। वो इसे धर्म की रक्षा के तौर पर देखते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूटोपिया में भी देखिए पूरी तरह आजादी नहीं है।
मतलब
वहां भी नास्तिकों के लिए कोई जगह नहीं है। समाज पर राज्य का काफी नियंत्रण है। यहाँ तक कि गुलामी भी मौजूद है यूटोपिया में।
अच्छा, गुलामी भी है?
हाँ, तो शायद यूटोपिया उतना भी उदार नहीं था जितना पहली नजर में लगता है। और ये बहस आज भी जारी है कि यूटोपिया लिखने के पीछे मोर का असली इरादा क्या था। क्या वे सचमुच ऐसा समाज बनाना चाहते थे, या ये सिर्फ यूरोप की कमियों को दिखाने के लिए एक साहित्यिक तरीका, एक व्यंग्य था?
ये गुत्थी तो शायद कभी पूरी तरह सुलझेगी नहीं। चलिए आखिर में उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की बात करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बताते हों।
हाँ, कई किस्से हैं। वो अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव के लिए बहुत मशहूर थे, यहाँ तक कि मौत के सामने भी।
अच्छा।
कहते हैं कि जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो सीढ़ियां थोड़ी कमजोर थीं। उन्होंने साथ चल रहे लेफ्टिनेंट से मजाक में कहा, मेहरबानी करके मुझे ऊपर तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करें, नीचे आने का इंतजाम तो मैं खुद कर लूंगा।
गजब, मौत के वक्त भी ऐसा मजाक। और वो चिड़ियाघर वाली बात क्या है? सुना है उनके घर पर एक मिनी जू जैसा कुछ था।
हाँ, चेल्सी में उनका बड़ा सा घर था। उसमें उन्होंने कई जानवर पाल रखे थे, जिनमें एक बंदर भी था। एक कहानी ये भी है कि वो कभी कभी उस बंदर को विद्वानों वाले कपड़े पहनाकर उन लोगों का मजाक उड़ाते थे जो सिर्फ ज्ञान का दिखावा करते हैं।
दिलचस्प। और वो गुप्त रूप से तपस्या भी करते थे, हेयर शर्ट वाली बात।
हाँ, ये उनके व्यक्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू था। दुनिया को वो एक मिलनसार, पढ़े लिखे, मानवतावादी दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तरह का तपस्वी जीवन जीते थे। कहते हैं कि वो अपने कपड़ों के नीचे बालों से बनी खुरदुरी बनियान पहनते थे।
अच्छा।
हाँ, जो तपस्या का एक तरीका था, और ये बात उन्होंने अपने परिवार से भी काफी समय तक छुपा कर रखी थी।
एक और दिलचस्प बात शायद ये है कि वो लड़कियों की पढ़ाई के भी हिमायती थे। ये तो जमाने के हिसाब से बड़ी बात है।
बिल्कुल, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। उन्होंने अपनी बेटियों, खासकर मार्गरेट को, वैसी ही शानदार शास्त्रीय शिक्षा दिलवाई जैसी उनके बेटे को मिली थी। मार्गरेट रोपर खुद एक विद्वान महिला बनी, और जब मोर टावर ऑफ लंदन में कैद थे तो मार्गरेट ही उनसे मिलने जाती थी।
हाँ, और उनके लिखे पत्रों और रचनाओं को बाहर लाने में भी उन्होंने मदद की थी।
बिल्कुल। और हाँ, उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे इरास्मस, उस दौर के सबसे बड़े विद्वान।
हाँ।
इरास्मस का जिक्र आया था।
इरास्मस अक्सर मोर के घर पर आकर रहते थे,
और उन्होंने अपनी मशहूर किताब इन प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा,
हाँ,
वो मोर के घर पर ही लिखी थी। और मजे की बात यह है कि इस किताब का लैटिन नाम मोरे एनकोमियम है, जो मोर के नाम पर एक तरह से शब्द खेल, मतलब पन भी है।
क्या बात है।
तो कुल मिलाकर सर थॉमस मोर एक बेहद जटिल, बहुआयामी और गहरे प्रभावशाली शख्सियत थे।
हाँ।
पुनर्जागरण के मानवतावादी भी, यूटोपिया जैसे क्रांतिकारी विचार के जनक भी।
हाँ।
एक कामयाब और चतुर राजनेता भी, एक कट्टर कैथोलिक भी, और अंत में अपने जमीर के लिए शहीद भी।
सारे रंग एक ही व्यक्ति में।
एकदम सही कहा आपने। वो अपने समय के सारे विरोधाभासों और संभावनाओं को जैसे अपने अंदर समेटे हुए थे। वो मध्ययुगीन सोच और आधुनिक विचारों के बीच एक पुल की तरह है। उन्होंने राजनीतिक दर्शन को समाज की व्यावहारिक आलोचना का एक औजार बनाया, लेकिन साथ ही ये भी माना कि इंसानी तर्क और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक होना चाहिए। उनकी महानता सिर्फ उनके विचारों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के नाटक में भी है।
किस तरह का नाटक?
वही आदर्श और यथार्थ, आस्था और तर्क, सिद्धांत और राजनीति, इनके बीच का जो निरंतर संघर्ष है।
हाँ, उनकी कहानी और उनके विचार आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ, और शायद अंत में सोचने के लिए यही सवाल सबसे मौजू है। देखिए, मोर ने एक आदर्श दुनिया, यूटोपिया, उसकी कल्पना की।
हाँ।
लेकिन जब वो खुद वास्तविक दुनिया में सत्ता में आए तो उन्हें समझौते करने पड़े, और ऐसे काम भी करने पड़े जो उनके लिखे हुए आदर्शों से शायद मेल नहीं खाते थे।
सही बात है।
तो आज के जमाने में जब हम अक्सर अपने आदर्शों और राजनीतिक या सामाजिक सच्चाइयों के बीच टकराव महसूस करते हैं, तो मोर का जीवन हमें क्या सिखाता है? अपने सिद्धांतों और सार्वजनिक जीवन की मजबूरियों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए?
ये सवाल तो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा, सोचने वाला सवाल है।
बिल्कुल, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।